अर्पित ने गौतम मर्चेंट से बात की थी। उसने उन्हें राधिका की बीती जिंदगी के बारे में बताया। राधिका ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, इस बारे में मर्चेंट फैमिली को पता चल गया था। हालांकि इशिका की मरने की खबर सुनकर गौतम की उम्मीदें टूट गई थीं, तो वहीं अर्पित को लगता था कि इशिका जिंदा है। अर्पित का बिहेवियर बिल्कुल किसी साइको की तरह था। उसने दिशांक को किडनैप करके रखा हुआ था। दिशांक इशिका की ही एक फैक्ट्री में बंधा हुआ था जहां रॉ मटेरियल रखा था। उस जगह ज्यादा लोगों का आना जाना मना था। बस इसी बात का फायदा अर्पित ने उठाया और दिशांक को बंदी बना लिया था। अर्पित दिशांक को टॉर्चर कर रहा था, फिर भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। अर्पित अपनी हर हद पार कर रहा था। अर्पित ने अपने बैग में से एक रिवॉल्वर निकाली और उसे लोड करके दिशांक के पास ले गया। उसने रिवॉल्वर को दिशांक के सीने पर पॉइंट करके सनक भरे लहजे में कहा, बस एक सेकंड लगेगा मुझे तुम्हारी जान लेने में, फिर तुम्हारी ये सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कभी नहीं आएगी। अर्पित की इतना टॉर्चर करने के बाद भी दिशांक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने हंसते हुए कहा, काश वो सच में जिंदा होती और मुझे बचाने के लिए यहाँ आती तो मुझे इतनी मार खाने का अफसोस नहीं होता। वैसे समझ नहीं आया तुम उसे इस तरह क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, ना तो तुम उसका दोस्त हो और ना ही दुश्मन, फिर उसे ढूंढने की आखिर क्या वजह है। दिशांक भी इंटेलिजेंस के मामले में कम नहीं था। शायद यही वजह थी कि इशिका को खुद के बाद दिशांक पर ही सबसे ज्यादा यकीन था। वो बातों ही बातों में अर्पित से सच पता लगाना चाहता था। सही कहा तुमने, ना मैं उसका दोस्त हूँ और ना ही दुश्मन, मैं वो हूँ जो अच्छा निकले तो दोस्त बन सकता हूँ और बुरा निकले तो दुश्मन, अर्पित ने बातों को घुमाते हुए कहा। दिशांक ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम उसके रिश्तेदार हो। दिशांक के अंदाज़ा लगाते ही अर्पित उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। वो भौहें चढ़ाकर बोला, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकले, मेरी बातों का मतलब समझ लिया। समझोगे क्यों नहीं, जिसके साथ रह रहे हो वो भी तो आम नहीं है। कभी तुमने सोचा है कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी बड़ी रिसर्चर कैसे हो सकती है, जबकि इस उम्र में तो लोगों को सही गलत की समझ नहीं होती, वो तो ठीक से अपना सब्जेक्ट तक सिलेक्ट नहीं कर पाते, वहीं तुम्हारी बॉस एक बड़ी रिसर्चर बन गई। दिशांक ने आगे कुछ नहीं कहा। शायद जिस पहेली को वो इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रहा था उसका जवाब खुद उसे मिल चुका था। दिशांक ने अपनी नज़रें नीचे की और अपने मन में कहा, हो ना हो ये आदमी मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करता है। मैम ने बताया था कि मिसेस सिंघानिया को भी मर्चेंट फैमिली ले गई है। ये आदमी हमें मिसेस सिंघानिया तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए मेरा मैम तक ये न्यूज़ पहुंचाना ज़रूरी है। इसके चाल से निकलना आसान नहीं है क्योंकि ये खतरनाक लग रहा है, बस ये मेरी जान ना ले, फिलहाल मेरे लिए यही काफ़ी होगा। दिशांक ने बेहोश होने का नाटक किया और अपनी गर्दन को इस तरह से गिरा दिया था जैसे उसके शरीर में कोई जान ना बची हो। उसके अचानक बेहोश होने पर अर्पित ने इरिटेट होकर गहरी सांस लेकर छोड़ी, अजीब मुसीबत है, अब इसके होश में आने का वेट करो, अगर इस बार उसने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो आई स्वेयर मैं इसकी जान ले लूंगा, अर्पित गुस्से में चिल्लाकर बोला और वहीं पर बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ इशिका दिशांक से लगभग दो दिनों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दिशांक इतना बेपरवाह बिल्कुल नहीं था कि वो किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब ना दे। दिशांक तो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी होता था तब भी वो मैसेज और कॉल को इग्नोर नहीं करता था, जबकि फिलहाल तो हालात ऐसे चल रहे थे कि दिशांक को खुद से इशिका के मैसेज का बेसब्री से इंतजार रहता था। इशिका सुबह लगभग 6 बजे के करीब उठी, उसने अपना मोबाइल चेक किया तो अभी भी दिशांक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इशिका ने गहरी सांस ली और परेशान स्वर में कहा, मैं किसी और से भी दिशांक के बारे में नहीं पूछ सकती हूँ, जरूर कोई गड़बड़ है, वरना दिशांक इस तरह लापरवाह बिल्कुल नहीं होता है। इशिका ने दिशांक को कॉल करने की कोशिश की पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया था। दिशांक का मोबाइल ऑलमोस्ट साइलेंट ही रहता था, यही वजह थी कि अर्पित अब तक इशिका के बारे में पता नहीं लगा पाया था। दिशांक के फिर से जवाब ना देने पर इशिका ने तुरंत अभिमन्यु को कॉल किया। अभिमन्यु उस वक्त अपने घर के जिम एरिया में था, वो ट्रेडमिल पर था। उसने तुरंत कॉल रिसीव करके मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मिसेज राजवंश, लगता है अब तो सच में आपका दिल नहीं लग रहा है। इशिका अभिमन्यु की एक्साइटमेंट और खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, उसने अभिमन्यु को गुड मॉर्निंग विश किया। उसकी आवाज में छिपी उदासी को समझते हुए अभिमन्यु ने तुरंत सीरियस लहजे में पूछा, तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? दिशांक मेरी किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, इशिका ने बताया। हाँ तो हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो या ऐसी जगह जहाँ वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हो, थोड़ी देर वेट कर लो, अभिमन्यु ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, पिछले 2 दिन से वेट कर रही हूँ, अभी तक जवाब नहीं आया, मुझे उसकी बहुत परवाह हो रही है अभिमन्यु, ऐसा वो कभी नहीं करता है, मेरे सारे काम वही संभालता है। क्या तुम पृथ्वी के जरिए उसकी लोकेशन का पता करके मुझे बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? तुम रुको, मैं अभी पृथ्वी को कॉल कर लेता हूँ, अभिमन्यु ने जवाब दिया और वो तुरंत ट्रेडमिल से नीचे आ गया था। अभिमन्यु ने उसी वक्त पृथ्वी को कॉल कर लिया। पृथ्वी के लिए ये काम मुश्किल नहीं था, अभिमन्यु ने उसे सारी सिचुएशन बता दी थी। 5 मिनट में दिशांक के मोबाइल नंबर के जरिए उसने लोकेशन पता कर ली थी। पृथ्वी ने इशिका से कहा, मिसेज राजवंश, मिस्टर राठौर इस वक्त आपकी फैक्ट्री के अंदर हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिछले 2 दिनों से वो वहाँ क्या कर रहे हैं। पृथ्वी की बात सुनकर इशिका और अभिमन्यु दोनों चौंक गए थे। इशिका के लिए दिशांक बहुत जरूरी था, अभिमन्यु उसकी जिंदगी में नहीं था, तब भी दिशांत ने उसे हर तरीके से सपोर्ट किया था। इशिका के बिना कुछ कहे ही अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, पृथ्वी अपने आदमियों को जल्द से जल्द उस फैक्ट्री में भेजो, दिशांत किसी प्रॉब्लम में है। दिशांत प्रॉब्लम में है, इसका मतलब ये मुसीबत इशिका पर आने वाली थी। जी सर, मैं देखता हूँ, पृथ्वी ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया था। वहीं दिशांत के प्रॉब्लम में होने की बात सुनकर इशिका के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने बिल्कुल धीरे से कहा, वो लोग इतने खतरनाक है, ये जानते हुए भी मुझे दिशांत को उनके पीछे नहीं भेजना चाहिए था। खामखा मेरी वजह से वो भी मुसीबत में आ गया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पृथ्वी सब देख लेगा। हालांकि वो गोवा में नहीं है, फिर भी उसे पता है कि दिशांत को बचाने के लिए किसको भेजना है, अभिमन्यु ने इशिका को समझाते हुए कहा। अभिमन्यु यही चाहता था कि जब तक दिशांत से बात ना हो जाए तब तक वो इशिका के साथ रहे। लेकिन तभी इशिका के कमरे के दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। बाहर युविका थी। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें जल्दी उठा दिया, पर रूही को स्कूल के लिए तैयार करना है, मुझे भी ऑफिस जाना है, तो सोचा मैं ही उसे तैयार करके भेज देता हूँ। तुम चाहो तो आराम से देर तक सो सकती हो, बस मुझे रूही को ले जाने दो। नहीं, मैं उठ गई हूँ, मैं कर दूंगी रूही को तैयार, इशिका ने बहाना बनाया, तो युविका हाँ बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही इशिका ने रहा, मैं कॉल पर नहीं रह पाऊंगी, लेकिन प्लीज दिशांत से कॉन्टैक्ट होते ही मेरी उससे बात करवाना।
अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ राधिका इस वक्त अपने कमरे में थी। खाना उसके कमरे तक पहुंच रहा था, लेकिन राधिका ठीक से खा नहीं रही थी। ये बात गौतम को पता चली तो वो गुस्से में उसके कमरे में पहुंचे। हालांकि राधिका ने जो भी किया था उसके बाद गौतम का बिल्कुल मन नहीं था कि वो उससे मिले, पर राधिका ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था। अगर राधिका ठीक से खाना नहीं खाती तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती थी, जो पहले से ही खराब थी। वहीं गौतम को अचानक अपने कमरे में देखकर राधिका उठने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन गौतम ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए सख्त लहजे में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उठने की, ये बिल्कुल मत समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिद के आगे झुककर यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। चुपचाप खाना खाओ, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना बाकी है, राधिका सिंघानिया। गौतम ने राधिका को राधिका सिंघानिया कहकर बुराया था, इसी बात से पता चल रहा था कि उनकी नाराज़गी कितनी ज़्यादा बड़ी थी। राधिका ने आँखों से कहा, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। क्या एक्सप्लेन करोगी तुम, किस किस बात की सफाई दोगी, हम इतने बुरे हैं क्या जो तुम्हारे बच्चों की जान ले लेते, क्या फ़ायदा हुआ ये सब करके, तुमने अपनी ज़िंदगी और जहन्नुम बना ली, गौतम ने कड़क लहजे में कहा। राधिका अब तक अपने आंसुओं को कंट्रोल किए हुए थी, लेकिन गौतम की बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उनका कहना सच था, राधिका ने अपने बच्चों को बचाने के लिए आदर्श से शादी की थी, यही शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला साबित हुआ। आदर्श की वजह से उसे ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहना पड़ा, ऊपर से उसके बच्चे को भी बदल दिया गया, इशिका के साथ न जाने क्या कुछ हुआ, वो भी राधिका की वजह से। राधिका को रोते हुए देखकर गौतम ने अपनी नज़रें घुमा ली थीं। उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ कसकर बंद कर रखी थीं ताकि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। गौतम ने राधिका की तरफ देखे बिना कहा, आदर्श सिंघानिया से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो मेरा अपना नहीं था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। राधिका, एक बार कहकर देखती कि तुम्हारी बच्चियों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात को टालता? आज तक मैंने तुम्हारी हर बात को माना था। पहले तुमने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई और आदर्श के साथ चली गई, और फिर बाद में तुमने हमसे छुपा कर रखा कि तुमने जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया है। गौतम की बात सुनकर राधिका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। ये बात उसके लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। राधिका की आंखों में आंसू थे, उसके शब्द मानो उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। राधिका चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी, उसने अपने ब्लैंकेट को कसकर मुट्ठी में कैद कर लिया था। राधिका की बिगड़ती हालत देखकर श्रुति ने चिल्लाकर कहा, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर मर्चेंट, डॉक्टर को बुलाइए, राधिका की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरा यकीन कीजिए, उसे खुद को नहीं पता था कि उसने ट्विंस को जन्म दिया था, हमें नहीं पता था, प्लीज़ डॉक्टर बुला दीजिए। श्रुति बुरी तरह घबराने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर गौतम ने राधिका की तरफ देखा, जो बेहोश हो चुकी थी। उन्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आदर्श इतने सालों से धोखे दिए जा रहे थे, और उनसे ज़्यादा धोखे में राधिका थी। अब तक तसल्ली थी कि मेरी बेटी भले ही मुझसे बगावत करके गई है लेकिन खुश है, पर तुमने ये ठीक नहीं किया आदर्श सिंघानिया, अच्छा हुआ तुम मर गए, वरना तुम सोच भी नहीं सकते उतनी बुरी सज़ा मैं तुम्हें देता, गौतम ने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा, और फिर राधिका के लिए डॉक्टर बुलाया। वहीं दूसरी तरफ रूही को तैयार करने के बाद इशिका खुद नहाने के लिए गई थी। रूही इस वक्त युविका के साथ थी और वो उसे लेकर स्कूल जा रही थी। जैसे ही युविका गाड़ी में बैठी, रूही ने कहा, ओ नो मासी, मैं अपना पेंसिल बॉक्स तो रूम में ही भूल गई, क्या प्लीज़ आप मुझे ला दोगी? कोई बात नहीं माईजान, बस मुझे दो मिनट दो, युविका ने मुस्कुराकर कहा, और रूही के गाल पर किस करके वो जल्दी से दौड़कर इशिका के कमरे में गई। किसी और के घर पर ना होने की वजह से इशिका थोड़ी बेफिक्र थी और उसने अपना मास्क बाहर कमरे में ही रख छोड़ा था। उसके हिसाब से युविका रूही के साथ वहां से जा चुकी थी। युविका कमरे के अंदर गई तो दरवाजा खुला था। उसने रूही का पेंसिल बॉक्स उठाया और गुनगुनाते हुए वहां से बाहर जाने लगी। तभी उसकी नजर एक मास्क जैसी चीज पर पड़ी। ये रूही भी ना अपने खिलौने को ऐसे ही बेड पर रखकर छोड़ देती है, युविका ने आईज रोल करके कहा और फिर उस मास्क को उठाकर दूसरी तरफ देखने लगी। तभी उसने महसूस किया कि उसे मास्क का चेहरा जाना पहचाना था। युविका की मौजूदगी से अनजान इशिका ने बाथरूम के बाहर कदम रखा। अचानक अपने घर में एक अनजान लड़की को देखकर युविका जोर से चिल्लाई। इशिका पकड़ी गई, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप मेरी आईडी पर और भी कहानियां हैं, उन्हें भी पढ़कर ट्राई करें।